बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 28 दिसंबर, दिन शनिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। थल सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोगों की आलोचना की। क्या राजनीतिक मुद्दों पर बयान देकर सेना प्रमुख ने अपनी लक्ष्मण रेखा लांग दी है? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला, लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। नागरिकता संशोधन कानून पर जहां एक तरफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हैं, वहीं इस मामले पर राजनीति भी खूब हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात से इनकार किया है कि उनके राज्य में पुलिस ने किसी भी प्रदर्शनकारी का उत्पीड़न किया। वहीं मेरठ जिले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान जाने की बात कहते हुए सुने जा रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस वीडियो में दिख रहे अधिकारी की आलोचना करते हुए सत्ताधारी बीजेपी को भी निशाने पर लिया है। वहीं कुछ भाजपा नेताओं ने इसे पुलिस अधिकारी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया बताते हुए उनका बचाव किया है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में हुए एक बम धमाके में दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। एम्बुलेंस स्टाफ की तरफ से जानकारी दी गई है कि मरने वालों का आंकड़ा 70 के पार पहुंच सकता है। मृतकों में अधिकतर यूनिवर्सिटी के छात्र हो सकते हैं, जो अपनी क्लास की तरफ जा रहे थे। मोगादिशु के एक बेहद व्यस्त इलाके में सुबह के वक्त सुरक्षा जाँच की जगह पर जोरदार धमाका हुआ। मोगादिशु के मेयर ओमर मोहम्मद ने इस संबंध में अधिक जानकारी दी है। एक सुरक्षा जांच केंद्र के नज़दीक एक ट्रक में जोरदार धमाका हुआ था। यह सुरक्षा जांच केंद्र अफगोए के पास था। इस धमाके में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है और करीब 90 लोग घायल हुए हैं। हताहत होने वालों में अधिकतर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। ये थे मोगादिशु के मेयर ओमर मोहम्मद के शब्द। इस्लामिक स्टेट समूह ने एक वीडियो जारी कर नाइजीरिया में 11 ईसाइयों की हत्या करने का दावा किया था। इस वीडियो में एक शख्स को गोली मारी गई थी, जबकि बाकियों का सिर कलम करते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो में यह भी कहा गया है कि ये हत्याएं आईएस प्रमुख अबू बकर अल बगदादी की हत्या का बदला है। इस्लामिक स्टेट की नाइजीरिया में बनी ब्रांच ISWAP ने बीते कुछ महीनों में ईसाइयों पर हमले तेज किए हैं। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में मुख्य पादरी जॉन ओलो रुनफेमी ने कहा है कि यह समूह दो समुदायों को बांटना चाहता है।
What is more shocking and very sad is that the perpetrators also tend to take a particular interest.
सबसे ज्यादा दुखद और हैरान करने वाली बात यह है कि आईएस ईसाइयों और मुस्लिमों को बांटना चाहता है। हालांकि हमारे देश के मुस्लिम उनकी बातों में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी यह समूह मुस्लिमों का नाम खराब करने का काम जरूर कर रहा है। ये थे नाइजीरिया में एक मुख्य पादरी जॉन ओलो रुनफेमी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इटली के प्रधानमंत्री जुजेपे कोंते ने आगामी स्थानीय चुनाव से पहले सेंटर लेफ्ट की अपनी गठबंधन सरकार का बचाव किया है। दक्षिणपंथी विपक्षी दल इस सरकार पर अक्सर हमला बोलते रहते हैं। साल की अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोंते ने कहा कि उन्हें अपनी सरकार की उपलब्धियों पर गर्व है। इटली में फाइव स्टार पार्टी ने सेंटर लेफ्ट डेमोक्रेट पार्टी के साथ गठबंधन कर सितंबर में सरकार बनाई थी। कोंते ने कहा कि उनकी सरकार ने टैक्स की चोरी रोकने में कामयाबी पाई है। वियतनाम की एक अदालत ने देश के पूर्व सूचना मंत्री को लाखों डॉलर के भ्रष्टाचार मामले में शामिल होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गुएन बैक्सोन पर आरोप थे कि उन्होंने सरकारी टेलीकॉम कंपनी मोबीफोन के लिए एक डील के दौरान लाखों डॉलर की रिश्वत ली थी। अदालत ने सुनवाई में पाया कि मंत्री ने इस कंपनी के शेयर बहुत महंगे दामों पर बेचे थे। चीन में वैश्यवृत्ति से जुड़े कुछ कड़े नियमों को खत्म किया जा रहा है। अभी तक चीन में वैश्यवृत्ति में शामिल सेक्स वर्कर्स और उनके साथियों को पुलिस बिना आरोप साबित किए अपनी हिरासत में ले सकती थी और फिर उन्हें 2 साल के लिए तथाकथित शिक्षण सेंटर में भेज सकती थी। चीन की संसद में इस नियम को खत्म करने के पक्ष में वोट पड़े हैं। अब कल से पुलिस किसी को बिना अपराध साबित किए हिरासत में नहीं ले सकती। साथ ही जिन लोगों को इस मामले में हिरासत में रखा गया है, उन्हें तुरंत रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। जापान में समुद्र तट के करीब कम से कम 5 लोगों के शव मिले हैं, जिन्हें उत्तर कोरिया का नागरिक समझा जा रहा है। ये सभी शव एक नाव में थे। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, नोट कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स 1811-7000 और 1811-7001। स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल और रक्षा मामलों के जानकार अजय शुक्ला, स्वागत है आपका।
शुक्रिया।
और स्वागत दुनिया भर में हमें सुन रहे तमाम श्रोताओं का। अभी दो दिन पहले आर्मी चीफ थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत का बयान सामने आया है, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ है। आइए सुनते हैं पहले आर्मी चीफ के उस बयान में क्या कहा गया है।
लीडरशिप इज ऑल अबाउट लीडिंग, देयरफॉर व्हाट इज सो कॉम्प्लेक्स अबाउट लीडरशिप इफ इट इज ऑल अबाउट लीडिंग।
नेता को नेतृत्व से ही जाना जाता है। अगर आप प्रगति के रास्ते पर ले जाते हैं तो आपके पीछे हर कोई हो जाता है। नेता वही है जो लोगों को सही दिशा में ले जाता है। नेता वो नहीं होता जो अनुचित दिशा में ले जाए। हम देख रहे हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें हिंसा और आगजनी हो रही है। यह कोई नेतृत्व नहीं है।
As we are witnessing in a large number of university and college students, the way they are leading masses of crowds to carry out arson।
ये हैं आर्मी चीफ बिपिन रावत, जो अपने इस बयान की वजह से उनकी काफी आलोचना हो रही है। अजय शुक्ला, आपकी ओर मुखातिब हो रहा हूँ, क्या भारतीय सेना में ये इस तरह की अपेक्षा की जाती है सेना से या सेना के मुखिया से कि वो राजनीतिक मुद्दों पर इस तरह का बयान दें?
देखिए, दो बातें इसमें आती हैं, एक है ट्रेडिशन या परंपरा की और दूसरी है रूल्स और रेगुलेशंस की।
परंपरा क्या रही है भारतीय सेना की?
परंपरा ये रही है 1947 से लेकर आज तक भारतीय सेना राजनीति से और या राजनीतिक मुद्दों से दूर रहती है। ये समझा जाता है कि जब सरकार या जब फौज राजनीतिक दल के साथ या राजनीतिक किसी स्ट्रीम ऑफ थॉट के साथ अपने आप को जोड़ देती है तो ये संभव है कि क्योंकि राजनीतिक गुटों के बीच में जो है सत्ता बदली होता जाता है, हो सकता है जो विपक्ष में है वो कल जाके जो है सत्ते में आ जाए। तो फौज जो है इस वजह से कि फौज किसी एक के साथ अलाइन ना हो, फौज राजनीतिक मुद्दों से दूर रहने की परंपरा जो है शुरू से अपनाई हुई।
ये परंपरा की बात हुई, नियम क्या कहते हैं? भारत की जो सेना है, भारतीय सेना, वो किसके लिए है? देश की रक्षा के लिए या किसी सरकार या किसी नेता के लिए जो 5-10 साल में आते जाते रहते हैं? ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया पे इन दिनों काफ़ी चल रहा है। नियम क्या कहता है सेना का इस बारे में?
देखिए, नियम बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है। आर्मी रूल 21 ये कहता है कि कम्युनिकेशंस टू द प्रेस या प्रेस के साथ जो बयान या टिप्पणियां हैं या कोई पब्लिक लेक्चर्स के बारे में, वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो आर्मी एक्ट के तहत काम करता है ना पब्लिश कर सकता है ना किसी तरीके से जो है कम्युनिकेट कर सकता है कोई भी मुद्दा जिसकी राजनीतिक मुद्दा हो। आर्मी रूल 21 बहुत स्पष्ट है इस मामले पे और मेरे ख्याल में आर्मी चीफ ने कुछ हद तक आर्मी रूल 21 को जो है तोड़ा है।
और क्या ये कितना उम्मीद की जाए कि आर्मी चीफ जो है वो खुद आर्मी रूल से वाकिफ ना हो?
ये
बहुत सोच समझ कर दिया गया बयान लगता है।
देखिए, आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत एक बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं। उनके साथ मैंने नौकरी की है, मैं उनको सदियों से जानता हूँ और ये संभव बिल्कुल नहीं है कि उनको रूल नहीं पता है। लेकिन हो सकता है कि वो किसी बात पे जो है किसी ज़्यादा मतलब लीडरशिप या नेतृत्व की बात कर रहे थे और उसमें जो है बगैर सोचे उन्होंने जो है ये राजनीतिक रंग दे दिया अपने मामले अपने बयान पे, पर ये संभव नहीं है कि उनको रूल नहीं पता है।
इस मुद्दे से जुड़े और पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे आगे, उससे पहले काफ़ी देर से कुछ श्रोता हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। पहले श्रोता कौन है इस समय हमारे साथ?
हेलो
जी, अपना परिचय दीजिए।
हाँ साहब, चौथे रंगलाल सिंह लमोरिया धुनू राजस्थान, संदीप सोनी जी नमस्कार।
बहुत नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका।
काफी दिनों से बात ही बहुत बहुत एक ऐसा है, ये जनरल साहब ने जो कहा ना बिपिन रावत जी ने, ये ऐसा था मैंने को अपने जैसे देश में भी हो रही है तोड़ फोड़ खूब है, चाहे रेल रोक देते हैं, बसों को चला देते हैं। हेलो
चौधरी साहब, आप आर्मी चीफ के बयान से सहमत हैं या असहमत हैं?
मैं तो देखो साहब इनके बयान से सहमत हूँ सर। हाँ सहमत हूँ।
लगता है उनसे संपर्क कट गया हमारा, अगले श्रोता के पास चलते हैं।
हेलो
जी, अपना परिचय दीजिए।
जी सोनी साहब नमस्कार।
नमस्ते नमस्ते, अपना परिचय दीजिए।
कर्नल साहब को भी मेरा नमस्कार, जय हिंद।
नमस्कार जी, नमस्कार।
मैं उत्तर प्रदेश के एटा से सजग समाज का संस्थापक भीषमपाल सिंह यादव बोल रहा हूँ।
जी
देखिए, जो आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है वो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की रेखा का भी उल्लंघन है, और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि सेना और संविधान की रेखा का भी उल्लंघन है। हमारी सेना के चीफ को देश की सियासत में किसी तरह की दखलंदाजी करने का कोई मतलब, सेना का जो रूल है जैसे अभी कर्नल साहब ने कहा आर्मी रूल 21, उसका सीधा सीधा हस्तक्षेप है। और इस बयान से मुझे लगता है कि वो जनरल बी के सिंह के अनुसरण कर रहे हैं उसके रास्ते पर चलने के लिए, ये उनके फ्यूचर का पॉलिटिकल प्लानिंग की पोल खोलता है ये बयान। राजनीति करनी है उनको तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन उन्हें राजनीति करनी है अगर तो उन्हें तुरंत सेना के जो सर्वोच्च पद पर आसीन है वो उससे तुरंत त्याग पत्र देना चाहिए और राजनीति करें, राजनीति में आए, स्वागत है उनका। लेकिन सेना में रहते हुए उनका बयान ये राजनीति में हस्तक्षेप करना, ये सेना को बांटने का काम करेगा, और ये इस तरह का बयान मैं समझता हूँ देश की सुरक्षा और देश के स्वास्थ्य के लिए कतई ठीक नहीं।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भीष्मपाल जी। हमारे श्रोता एटा उत्तर प्रदेश से अजय शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ दोबारा। आपको याद आता है कि भारत के इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि किसी आर्मी चीफ ने, सेना प्रमुख ने ऐसा कोई बयान दिया इस तरह का जिसकी वजह से उस पर उंगली उठी हो?
जी हाँ, ऐसा हुआ है। जो 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 पिछले स्पीकर ने जो बोला था, जनरल वी के सिंह का उदाहरण है, उन्होंने भी जो है राजनीतिक रंग के सवाल उठाए थे, कुछ ऐसे बयान दिए थे, ख़ास करके अपना जो सुप्रीम कोर्ट में डेट ऑफ बर्थ का केस था उसको हारने के बाद। लेकिन अभी जो बात हो रही है वो अलग बात है। जो आपने बयान सुना था, जो आपके श्रोता ने कहा था कि आर्मी चीफ किसी राजनीतिक पक्ष में जो है अपना साथ दे रहे हैं, अपना जो है सपोर्ट दे रहे हैं, इसी बात से बचने के लिए ये कानून और ये परंपराएं बनाई गई हैं, ताकि फौज जो है राजनीति से या सियासत से बिल्कुल अलग रहे और किसी एक गुट का हिस्सा ना नज़र आए किसी को। तो ये बहुत ज़रूरी है जो बात जनरल रावत ने की थी। हो सकता है वो बात इन इटसेल्फ सही थी, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात हुई थी, जिस राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी, वो मेरे ख्याल में गलत था।
आपको लगता है शुक्ला जी कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में सेना का राजनीतिकरण करने की कोशिश हुई है?
जी हाँ, आपने देखा होगा पिछले 5-6 सालों के अंदर सियासत में ये नेशनल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे जो हैं बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक्स का मुद्दा हो, चाहे बालाकोट का अटैक का मुद्दा हो, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर स्थिति का मुद्दा हो। और जब ये मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे ऊपर आते हैं तो फौज का भी जो है प्रोफाइल बदली हो जाता है, उस पर उसको जो है ज़्यादा विजिबल या लोगों के नज़र में जो है ज़्यादा आ जाता है। तो ये हम देख रहे हैं पिछले 5-6 सालों से, ये फौज जो है ज़्यादा नज़र में आ रहा है। फौज के लिए जो लोग काम करते हैं, बड़ा मुश्किल काम करते हैं, बहुत लगन के साथ काम करते हैं, और वो बड़े देशभक्त लोग हैं, लेकिन जब वो नज़र में आते हैं, पब्लिक स्फीयर में आ जाते हैं, तो फिर ये बातें आने शुरू हो जाती हैं कि फौज जो है ये कर रहा है वो कर रहा है जो है, और फौज को ख़ास ध्यान देना चाहिए ऐसे हालात में कि वो सियासत से दूर रहे।
और भी सियासत से जुड़े सवाल लेकर मैं आता हूँ आपके पास, उससे पहले कुछ और श्रोताओं से हम बात करेंगे।
हाँ जी नमस्कार सर।
जी नमस्ते
सर, मैं गुजरात से डीके परमार बोल रहा हूँ, आमरण गांव है मेरा।
परमार साहब बहुत स्वागत है आपका।
मैं 20वीं बार आपसे मुखातिब हुआ हूँ सर।
आप तारीख नोट करते हैं मुझे पता है, आज बताइए परमार साहब।
अजय शुक्ला साहब को भी मेरा खैर मकदम।
नमस्कार परमार साहब।
परमार साहब ये बताइए कि आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, आपको लगता है कि सेना प्रमुख विपिन रावत का जो बयान है वो प्रदर्शनकारियों को लेकर जो उन्होंने कहा है वो सही था, उन्हें ऐसा बयान देना चाहिए था नहीं देना चाहिए था, क्या लगता है आपको?
सर ये बयान तो ठीक नहीं है, सेना का मनोबल को असर करने वाला है। और साहब ने बता, शुक्ला साहब ने बताया कि किस रूल के मुताबिक, तो ये ऐसे बयान नहीं दे सकते सर। बिपिन रावत साहब 31 को रिटायर्ड होने वाले हैं, बाद में कि सीडीएस की रेस में तो नहीं है ने सर। हम भारतीय फौजियों को भगवान की तरह मानते हैं, उलट भूकंप साइक्लोन पूर जैसी परिस्थितियों में फिरस्तों की तरह काम करते हैं। ऐसे बयान से इसके मनोबल को धक्का लगता है। यदि उनका बयान फौजियों का अच्छी पौष्टिक खुराक अच्छा एनिमेशन और अन्य सुविधा का होता तो हम उसको फिरस्तों की तरह सम्मान देते हैं। फौज का मोरल टूटना नहीं चाहिए, संवैधानिक मूल्यों का अपमान नहीं होना चाहिए सर। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो जनरल माणेकशॉ भी उसका भी सम्मान करती थी, बहुत प्रेम से उनका भी सम्मान किया करती थी। और रिटायर जनरल शुक्ला साहब तो बहुत अनुभवी आदमी है, ऐसे बयान की क्या जरूरत है? जैसे यदि उसको सर को राजनीति में ज्वाइन करना है तो 31 के बाद कर सकते हैं, कौन मना कर सकता है।
बहुत शुक्रिया परमार साहब, गुजरात से हमारे बहुत पुराने श्रोता थे। शुक्ला जी बड़ी अच्छी बात उठाई उन्होंने, इंदिरा गांधी का जिक्र किया, मानेकशॉ का जिक्र किया। आपको लगता है कि पिछले 1-2-3 दशकों में या उससे और पहले और आज की तारीख में अब सरकार और सेना के संबंधों में, सैन्य नेतृत्व और असैन्य नेतृत्व के संबंधों में किसी तरह का खास बदलाव आया है जो हमें नोटिस होना चाहिए?
नहीं, मैं बदलाव ज़रूर आया हुआ है लेकिन इसमें कोई खामी नहीं आई हुई है। अगर कुछ बदलाव आया है तो वो ये है कि सैन्य नेतृत्व असैन्य नेतृत्व के ज़्यादा नज़दीक हो चुका है, और इसका नतीजा ये है कि वो ऐसे मुद्दों के ऊपर, राजनीतिक या मुद्दों के ऊपर टिप्पणियां देना शुरू कर रहे हैं। पर ये बात जो है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर जनरल रावत रिटायर हो रहे हैं 31 दिसंबर के बाद तो उसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको पूरी छूट होगी ऐसे बयान देने के। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो 31 दिसंबर के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पोस्ट पे जो है आ जाएं, और ये भी संभव है कि और कोई सरकार आ जाए बीजेपी सरकार की जगह में। तो उस हालत में ये परिस्थिति नहीं होनी चाहिए कि जनरल रावत ने जो है ऑपोजिशन के खिलाफ कोई बयान देना हो और उसके नए सरकार के साथ उनके रिश्ते ख़राब हों। तो इसलिए सेना को राजनीति के स्तर से बाहर रखा जाता है और जनरल रावत को जो है इस बात पे ध्यान देना चाहिए।
शुक्ला जी, सेना के सुर से यदि सत्ता अपना सुर मिलाने लगे तो क्या इसे लोकतंत्र की सेहत के लिए हानिकारक नहीं कहा जाएगा?
देखिए, आपने देखा होगा भारत के अड़ोस पड़ोस में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, म्यांमार में सेना ने जो है धीरे धीरे राजनीतिक के अंदर कदम रखते हुए अपना राजनीतिक रोल बढ़ाया और कुछ देर बाद कू करके वहाँ पे जो है पावर ले ली, या मतलब रूलर्स बन गए देश के। भारत की सेना इस मामलों से बहुत दूर रही है, बहुत ही लॉडेबल चीज़ है कि वो पिछले जो है 70 सालों में, जितने भी साल हुए हैं इंडिपेंडेंस से, राजनीति में या सियासत में उन्होंने कदम कभी नहीं रखा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अभी भी ऐसे मामलों से दूर ही रहना चाहेंगे। लेकिन जब ऐसी बात हो जाती है तो ये जो है ये बातें जो है पब्लिक कॉन्वर्सेशन में आ जाती हैं और ये बहुत डेमोक्रेसी के सेहत के लिए ये अच्छी बात नहीं है।
पाकिस्तान की फ़ौज का जिक्र किया आपने, बहुत से लोगों का ये कहना है, जानकार ये कहते हैं कि ये जो सेना का राजनीतिकरण करने की कोशिशें पिछले कुछ वर्षों में हुई हैं और जिस कड़ी में अभी आर्मी चीफ का बयान है, ये भारतीय लोकतंत्र को उसी दिशा में ले जा सकता है जिस दिशा में पाकिस्तान पहुंचा।
मैं ये नहीं कहूंगा कि उस दिशा में भारतीय लोकतंत्र जा रहा है या फौज की कोशिश है कि उस तरफ जाए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब फौज राजनीतिक बयान देना शुरू करती है या राजनीति में जो है धीरे धीरे उसका रोल बढ़ता है तो ये फौज या डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी के सेहत के लिए, डेमोक्रेसी के कंटिन्यूएशन के लिए अच्छी बात नहीं है। भारतीय सेना जो है, और मैं ये दोबारा बात दोहराऊंगा, इस मामले में कभी जो है दोषी नहीं ठहराई गई है। उन्होंने हमेशा जो है अपना काम बढ़िया तरीके से किया है, बगैर राजनीति में, बगैर अपने जो है सीमा जिसके अंदर काम करना चाहिए उसमें से एक कदम बाहर नहीं रखा है, और ये ऐसा ही होना चाहिए।
लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि हाल के वर्षों में भारतीय सेना को राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश की गई है।
जी हाँ, ये मैं बिल्कुल अग्री करूँगा।
अगले श्रोता के पास चलते हम, कौन है इस समय हमारे साथ?
हाँ जी, हाँ जी सर जी, सत श्री अकाल।
सत श्री अकाल जी,
मैं सुखविंदर सिंह खालसा पंजाब से बोल रहा हूँ, जिला जलंधर।
बहुत स्वागत है आपका।
हाँ थैंक यू जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पहली बात तो मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ, कंडम करता हूँ, इतने इस ओहदे पर बैठ के ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है कि जिस तरह राजनीतिकरण किया जा रहा है, हो सकता है जो सेना मुखी जल्द बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, ऐसी बात भी हो सकती है कि इनका कोई इरादा ऐसा हो, जैसे पहले बीके सिंह चले गए हैं, ऐसे इस तरह चले गए हैं। वैसे फिर यही बात है कि ये फौज का, सेना का ये राजनीतिकरण हो रहा है, और वो लोग भी अपनी जो सेवाएं हैं खुद बीजेपी को या सरकार को समर्पित कर रहे हैं। मैं यही बात कहना चाहता हूँ।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको ध्यान आता है शुक्ला जी की जनरल वीके सिंह से पहले आर्मी चीफ या इस तरह से किसी का राजनीति में पदार्पण हुआ हो और मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली हो, ये एक जो ट्रेंड सब दिखता बनता हुआ दिख रहा है हाल के वर्षों में?
उनसे पहले जनरल सिन्हा थे जो कि आर्मी चीफ नहीं बने, उनको वो बहुत ही काबिल और लायक अफसर थे।
आप उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं जो असम के राज्यपाल रहे?
जी हाँ
जी हाँ।
और फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर के
राज्यपाल होना अलग बात है और कैबिनेट में मंत्री होना अलग बात है,
पर वो इलेक्शन में खड़े हुए थे, इलेक्शन हारे और उसके बाद में जो है वो गवर्नर बने, राज्यपाल बने दो स्टेट्स के। लेकिन ये, और ये भी कहना ज़रूरी होगा कि भारत के फर्स्ट आर्मी चीफ जनरल करियप्पा जो बाद में फील्ड मार्शल बने, वो भी इलेक्शन में खड़े हुए और वो भी हारे। तो इससे दो बातें साफ जाहिर होती हैं। पहली बात यह है कि फौजी जो है इलेक्शन पॉलिटिक्स में जो है ज़्यादा सफलता नहीं प्राप्त करते हैं, और दूसरी बात यह है कि बहुत कम ऐसे उदाहरण हुए हैं जबकि भारतीय सेनापति या आर्मी चीफ ने पॉलिटिक्स में कदम रखा हो।
इस हिसाब से ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जनरल विपिन रावत सेवानिवृत्त होने के बाद किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हमारे कई श्रोता जिक्र कर रहे थे। अगले श्रोता के पास चलते हैं हम।
नमस्कार जी सोनी जी।
जी नमस्ते, कौन साहब बोल रहे हैं?
मैं सर मोहन सिंह काजला बोल रहा हूँ, काजला जी दाणी, जिला झुंझुनू राजस्थान से।
बहुत स्वागत है झुंझुनू से आप बोल रहे हैं। ये बताइए आज की आर्मी चीफ के बयान के बारे में क्या सोचते हैं आप?
मैं ये सोचता हूँ कि जनरल साहब जोश में आके होश खो बैठे हैं।
और इसकी वजह क्या लगती है आपको?
इसकी वजह ये है, इन्होंने मतलब बाउंसर जो मारा है ना, तो अब रिटायर हो रहे हैं और ये आज अगर ये बाउंसर नहीं मारते तो इनको चर्चा में आप कभी भी नहीं लाते। जाते जाते मतलब ये अपने के लिए तोहफा लेके गए हैं। और जो कुछ बोले है वो ठीक ही बोले है, कोई ज्यादा गलत नहीं बोले, अपन थोड़ा सा बोलने का इनका जो तरीका था ना इसमें जल्दबाजी कर बैठे।
टाइमिंग का सवाल उठा रहे हैं ये कि ये जब 4-5 दिन बचे हैं रिटायरमेंट के उसी समय क्यों इन्होंने ये बयान दिया। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है रणनीतियों के मामले में आर्मी में। तो
देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने अपने पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स या प्रॉस्पेक्ट्स देखते हुए या नज़र में रखते हुए उन्होंने बात की। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने सही बात गलत जगह पे गलत समय पे की। इसमें कोई शक नहीं है कि जब कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होना होता है तो तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, ये तो हर इंसान उनके साथ सहमत होगा।
लेकिन आर्मी का रोल इसमें नहीं है। इस बारे में बयानबाजी करें जी। अगले श्रोता के पास चलते हैं। कौन है हमारे साथ?
जी शकील अहमद बोल रहा हूँ साहब, शाही बरेली से।
बहुत स्वागत है शकील जी।
जी साहब, मैं इसमें ये कहना है साहब कि पिछले दिनों जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान के जिम्मेदार लोगों की तरफ से गैर जिम्मेदारी दिखाई गई है, उस जो अनुशासन टूटा है उसी की कड़ी में जनरल साहब भी शामिल हो गए कि अब चाहे जो बोल लो सब देश में चल ही जाएगा, और जो भविष्य की उनकी राजनीति की इच्छाएं होंगी या नहीं होंगी वो सब चीज सामने आ ही रही है। फिलहाल जो भारतीय फौज के उच्च मानदंड है भारत में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं वो आगे भी रहें, यही हमारी इच्छा है।
बहुत शुक्रिया बरेली से हमारे श्रोता शकील। शुक्ला जी, ये श्रोताओं के कॉल्स ये बताते हैं कि सेना से भारत के लोग बहुत 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 उम्मीद रखते हैं, इसलिए उन्हें इस तरह के बयान नागवार गुजरते हैं।
नहीं, ये बहुत उम्मीद रखने के अलावा बहुत इज्जत करते हैं सेना की और बहुत मोहब्बत करते हैं सेना के साथ और सिपाहियों की, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। लेकिन मुझे ये ताज्जुब होता है कि किस समझदारी के साथ लोग बात कर रहे हैं कि सेना को जो है ऐसे मामलों से दूर ही रहना चाहिए, और सेनाध्यक्ष जैसे जिम्मेदार पद पे जो अफसर हैं उनको सोच समझ के जो है बात करनी चाहिए। ये बहुत समझदारी आपके श्रोता ने डिस्प्ले की है।
तो देखिए श्रोता भी किसके हैं, बीबीसी के श्रोता हैं।
जी हाँ,
अगले श्रोता के पास चलते हैं
हम। हेलो
जी, अपना परिचय दीजिए।
हाँ सुनी जी, नमस्ते।
नमस्ते,
मैं पूछत से अरुण भगड़े बोल रहा हूँ सर।
जी अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका।
हाँ जी सर, ये जो बयान दिया है इसको राजनीतिक दृष्टि से मत देखिए आप। ये इन्होंने अपने दिल की जो काइंड हार्टेड आदमी है, मिलिट्री में भी है तो भी क्या हुआ, ये अपने जैसे नरम दिल वाले इंसान है इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दे दिया सर जी, और इसको राजनीतिक मत देखिए आप।
बहुत शुक्रिया अरुण जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि वो आम आदमी नहीं है, वो आर्मी चीफ है।
बिल्कुल, और चाहे वो खुद जो है उन्होंने ना देखा हो राजनीतिक नज़रिए से, और मैं इस बात को मानने के लिए तैयार भी हूँ कि शायद उन्होंने ना देखा हो या ना सोचा हो, लेकिन उनके पद पे जो अफसर हैं और जो सेना अध्यक्ष हैं इस देश के, उनको सोच समझ के जो है बयान देना चाहिए।
शुक्ला जी, भारत की जो सेना है गैर राजनीतिक रही है, लेकिन आगे भी सेना राजनीति से दूर रहे, गैर राजनीतिक रहे, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है ताकि सेना पर किसी तरह की उंगली ना उठे?
ये बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग राजनीतिक गुट एक साथ आएं और ये पूरी तरीके से सहमत हों कि हम सब का जो है फ़ायदा इस बात में है कि सेना को जो है राजनीति या सियासत से दूर रखी जाए, और जब सेनापति या सेना अध्यक्ष गलती से भी कोई ऐसा बयान दें तो उनको हल्के से याद दिलाया जाए कि ये जो है ये आपका क्षेत्र नहीं है, और जो राजनीति हमारे बीच में जो चल रही है या डेमोंस्ट्रेशंस या प्रोटेस्ट या रायट्स या कुछ भी हो, ये आपके आपके क्षेत्र में नहीं आना चाहिए, ये लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का काम है और आप जो है इस पे बयान ना ही दें तो बेहतर हो।
और एक सवाल अनुत्तरित हम श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, उस स्थिति में क्या होगा जब कोई पार्टी कोई नेता ही सेना को टूल्स औजार की तरह इस्तेमाल करना चाहे? इंडिया बोल में हम चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमें सुन रहे तमाम श्रोताओं और रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया।
स्टूडियो मैनेजर राजेश चौहान के साथ मुझे संदीप सोनी को दीजिए इजाज़त। अगले साल फिर होगा इंडिया बोल, फिर होगी मुलाकात। शुभ रात्रि।